यही योग करेंगे। तो हमने कहा ठीक है दादी जैसे कहती हैं। तो दादी के कमरे में ही सामने ट्रांसलाइट थी और वहां बैठी थी, तो हम सब ट्रांसलाइट की तरफ मुंह करके बैठ गए, दादी की तरफ नहीं। दादी भी ऐसे बैठी थी और हम भी ऐसे बैठ गए सभी। कुछ बहनें भी आके बैठ गई, 10-12 लोग थे। करीब योग चला 6:45 से 7:30 तक, बहुत पावरफुल योग था। ट्यून भी धीरे धीरे बज रही थी, गीत भी बज रहे थे। और जब 7:30 सफेद लाइट हुई और हम सब दादी की तरफ घूम गए, दृष्टि लेने लगे, तो दादी संदेश सुनाने लगे। तो हम लोगों ने पूछा, दादी आप बाबा के पास गई थी क्या? कहती हाँ, आज बाबा ने मुझे अचानक अपने पास बुला लिया। बाबा अचानक बुला सकता है कभी भी दादी को, तो बाबा ने बुला लिया और वो संदेश शायद आपको सुनाया गया। संक्षिप्त रूप में ही दादी ने सुनाया और मैं वहीं बैठा था, तो नोट ले लिया और सबको भेजा। बाबा बच्चों को याद करता है। आज की मुरली के अनुसार बड़ी रमणीकता से बाबा ने कहा कि जब बच्चे मुझे याद करते हैं तो किस लिए याद करते हैं? समर्थ बनने के लिए। उनको समर्थ ही मिलती है, शक्ति मिलती है। लेकिन बाबा भी बच्चों को याद करता है, वो किस लिए याद करता है? बाबा की समर्थि में और एडिशन हो जाती है। बड़ी अच्छी बात थी बाबा की, कि बाबा की समर्थि में और एडिशन हो जाती है कि बाबा इतनी भुजाओं वाला है, 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा बाबा है। गायन तो ऐसा है ना। तो बाबा किन्हें याद करता है वो तो आज की सारी मुरली में आपने अंडरलाइन किया होगा। ये तीनों दादियों का वो दृश्य मुझे याद है। मैं मधुबन में ही था जो उस समय थे। 77 में हाथ उठाओ, कोई नहीं है। मधुबन में थे, मधुबन में जो थे वहां हाथ उठाओ। ठीक है। तो दादी जी विदेश यात्रा पर पहली बार गई, प्रकाशमणि दादी 77 में बाबा से छुट्टी लेने के लिए आई, बैठी थी सामने। तो तीनों दादियों को, विशेष दीदी, परदादी और दादी, तीनों दादियां सामने थी। और बाबा ने दिल तख्त नसीन की मुरली सुनाई। वो छोटा ग्रुप था, छोटे हाल के अंदर ही। दादियों का बाबा के ऊपर इतना अच्छा अधिकार था, मुझे याद है कि अगर दादी कभी भी गुलजार दादी को कह दें जाओ बाबा के पास अभी अभी, पूछ के आ जाओ, बाबा को बुला करके ले आओ, तो फट से दादी चली जाती थी और बाबा का संदेश ले आती थी या बाबा खुद आ जाते थे। एक बार मधुबन में सबसे पहले नई गाड़ी आई, कार, पहले पहले शुरुआत हुई उस कार से, किसी ने बाबा के यज्ञ में नई कार दी। पुरानी तो एक छोटी थी पहले, लेकिन नई कार आई तो दोनों दीदी दादी और गुलजार दादी बैठ करके उसमें सैर करने के लिए गए। और अनादरा पॉइंट पर खड़ा किया गाड़ी में। गाड़ी में ही दादी को कहती है गुलजार, बड़ी दादी कहती है बाबा को बोलो इस गाड़ी में पहले पहले बाबा बैठे फिर हम बैठेंगे। और वहीं अनादरा पॉइंट पर गाड़ी खड़े खड़े, वहीं सब अंदर ही बैठे बैठे, सिर्फ एक ड्राइवर था और तीनों दादियां थी, कोई चौथा पावर नहीं था। और दादी बाबा के पास चली गई और बाबा आ गए, गाड़ी में बैठ गया करके। कई ऐसे दृश्य हैं, जब भी कोई बाबा से पूछना होता, कोई संदेश सुना मंगाना होता, कैसे बाबा ने यज्ञ की संभाल की है, यज्ञ की रक्षा की है, और एक एक बात, छोटी छोटी बात के लिए भी गाइड किया है। हम लोगों ने शुरू से देखा है, कभी बाबा को हम दादियां दीदी के कमरे में बुला लेती थी, कभी गद्दी पर बुला लेती थी, कभी छोटे हाल में बुला लेती थी। जब भी जरूरत हुई, कोई भी बात पूछनी हुई बिना बाबा के पूछे कुछ नहीं करना। और एक नियम बना हुआ था कि दो दादियां मधुबन में जरूर रहेंगी। दीदी और दादी की तो जोड़ी थी, क्योंकि दीदी कभी मुरली नहीं सुनाती थी, दादी जी मुरली सुनाती थी। और दादी इतने दिन के लिए, एक मास के लिए बाहर जाएंगी मधुबन में, तो मुरली कौन सुनाएगा। तो परदादी को दीदी ने अपने साथ रखा कि परदादी मुरली सुनाएगी। तो उस समय परदादी मधुबन में रही तो बाबा ने उनको कहा कि और समीप आने का भाग्य मिला है, बहुत अच्छा पार्ट है दीदी और दादी के साथ शुरू से लेकर के। कभी भी एक एब्सेंट हुई तो दादी को बुला लेते थे कलकत्ता से। पर दादी की अपनी विशेषताएं, जिसको बाबा ने आज कहा कि वो तो उदाहरण मूरत है, एक आधार मूरत है, दूसरी उद्धार मूरत है, तीसरी उदाहरण मूरत है। तो वो दृश्य मुझे याद है, जब पहली बार विदेश में अमेरिका लंदन दादी गई तो इतनी अच्छी लहर थी सारे ब्राह्मण परिवार के अंदर कि अब कुछ नया होगा, नया मोड़ आएगा सेवाओं में। तो दादी गई और उसके बाद इतनी अच्छी सेवाएं हुई, दादी का स्वागत इतना भव्य से विदेश में भी हुआ। और जब आबू में आई वापस तो हम सभी ने कितना स्वागत किया होगा, बहुत सुंदर सुंदर हाल, फूल मालाएं सजा करके पूरा। ओम शांति भवन नहीं था उस समय, मेडिटेशन हाल ही था। और आबू के अंदर ही कई जगह पर प्रोग्राम रखे थे स्वागत के, गुजरात समाज की ओर से स्वागत था, कई संस्थाओं ने आबू के दादी जी का सम्मान किया था। बहुत अच्छी लहर सेवाओं की उस समय शुरू हुई थी। कि जो भी बाबा के बच्चे निमित्त हैं, जो भी हैं, वो इस यज्ञ की नींव हैं, धुरी हैं, वो अपनी मनसा शक्ति से इस शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवाएं करें। बार बार दादी कहती थी अभी वाचा का समय नहीं है, और कुछ भी परिवर्तन करना असंभव नहीं है। कोई भी चीज गलत है उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी शक्तिशाली मनसा चाहिए। कोई भी मनसा सेवा कर सकता है। तो हम लोगों ने बहुत से प्रश्न दादी के ऊपर, ने कहा दादी से और कुछ निकलवाएं, मनसा सेवा क्या है, मनसा सेवा कैसे की जाए, उसके लिए क्या जरूरत है। तो दादी साठ सुनाती जाती थी एक एक शब्द में, मनसा बहुत शुभ भावना वाली चाहिए, बहुत क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, जिसमें बाबा की टचिंग आ सके, वो बाबा की टचिंग को कैच कर सके, ऐसी रूढ़ियां थी। तो हम सभी भी वर्तमान समय के अनुसार, मैंने कहा दादी इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए ना। तो दादी ने कहा तुम तो हमेशा डायरेक्शन लिखते हो, सबको डायरेक्शन भेजो, तो बाबा कुछ इशारा करेगा तब भेज देंगे। तो दादी ने कहा जैसे ज्वालामुखी योग पर बाबा ने मुरलियां चलाई थी और बहुत अच्छी लहर पिछले वर्ष चली थी, सब जगह भट्टियां हुई थी ज्वालामुखी योग की, ऐसे ही हरेक ब्राह्मण आत्माएं इसके लिए समय निकालें। तो योगिनी बहन ने पूछा क्या बैठ करके मनसा सेवा करूं, संगठन में बैठा जाए तभी मनसा सेवा होगी। तो दादी ने उसका जवाब यही दिया कि वो तो समय मिले तो जरूर बैठो, लेकिन चलते फिरते अपनी बहुत शुद्ध शक्तिशाली मनसा को, जिसमें कोई व्यर्थ न हो, कोई साधारणता न हो, ऐसी शुद्ध मनसा का वायुमंडल बनाओ। बहुत विशेष को सामने रखकर के मनसा दान नहीं दो, इससे वो बदल जाएगा ऐसा नहीं सोचो। बेहद में मनसा सेवा करो, बेहद की दृष्टिकोण से बेहद में स्थित होकर के बाबा को याद करो, बाबा की शक्तियां लो और सबको दो। तो ऐसी रूरियान करते फिर दो तीन जगह मुझे जाने को और मिला, क्लासेस के लिए बुलाया लोगों ने। तो यही एक विशेष बाबा की बात थी, दादियों का इशारा था कि समय अनुसार हम सभी मनसा को शक्तिशाली बनाएं और उसके लिए जो कुछ भी हम देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव मनसा के ऊपर न पड़े। कोई भी व्यर्थ बातें अगर मनसा के अंदर चलती रहती हैं तो मनसा की शक्तियां खत्म होती हैं। इसलिए शक्तिशाली मनसा के लिए कम से कम संकल्प और वही संकल्प जो बहुत जरूरी हैं, जो आवश्यक हैं, वही उठें। संकल्पों पर बहुत ध्यान हो, जैसे दादी जानकी जी कहती हैं, बहुत क्वालिटी वाले संकल्प होने चाहिए। और वो क्वालिटी वाले संकल्प जो सीमित कम से कम होंगे वो बहुत शुभ भावनाओं से भरे हुए हों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब बाबा से अपना अधिकार लें। क्योंकि कई स्थानों पर अभी तक भी भले अच्छे वातावरण में हम देख रहे हैं, सब अंदर से समझते हैं ये कार्य बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छी सेवाएं भी हैं, बहुत अच्छी जीवन है, लेकिन फिर भी कई बाबा के बच्चों को जब नियम और मर्यादाओं पर वो दृढ़ता से चलते हैं तो उनके परिवार वाले ही बिघन डालते हैं, उनके लिए कोई न कोई रूप में रुकावट बनते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एक भाई परिवार सहित ज्ञान में था, उसका बेटा मुझे कहता है कि मेरे मम्मी पापा ज्ञान में हैं, बहुत पक्के हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन मेरे को बार बार कहते हैं बच्चे तुमको तो शादी करनी पड़ेगी नहीं तो घर कौन संभालेगा। कहता है मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, बार बार मेरे को फोर्स करते, अब मैं क्या करूँ। ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो भी मुरली सुनते हैं, उनको देख करके ही मैं ज्ञान में आया। तो आजकल माँ बाप भी कई बार ज्ञान होते हुए भी बच्चों को बंधन डालते हैं, रुकावट डालते हैं, अब वो क्या करे, ऐसे समय पर क्या किया जाए। क्योंकि बच्चियों के लिए तो कह देंगे भले सेंटर पर रहो, बच्चियों के अंदर हिम्मत नहीं आती सेंटर पर रहने की, वो कहेंगे हम नौकरी करेंगे, शादी नहीं करेंगे लेकिन नौकरी करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए हमेशा समझते हैं इसकी शादी होगी तो कोई घर में आएगी बहू, घर संभालेगी। एक अंदर की सूक्ष्म भावनाएं रहती हैं ज्ञानी आत्माओं के अंदर भी। तो हमने कहा अभी तुमको तो बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा, महावीर बनना पड़ेगा, तब विजय होगी। क्योंकि ऐसे समय पर जब माँ बाप दबाव डालने लगते हैं, जरा भी कुछ कमी अपने अंदर संस्कारों में हुई तो फिर बच नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है अपने आप को बहुत शक्ति संपन्न बनाने की, बहुत अच्छे शक्तिशाली संकल्पों में इस संगम युग की, इस निर्बंधन जीवन की वैल्यू को समझने की। बाबा ने हम सबको कितनी महान जीवन दी है, कितनी निर्बंधन जीवन है, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं। क्लास के बीच में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जिनका उत्तर पर्सनली देना होता है, लेकिन फिर भी अचानक पूछ देंगे क्या करें ऐसे समय में। तो बाबा भी कहता है कि अगर कोई कमजोर ही है और वो पूछता है तो बाबा क्या कहेगा, भले कर लो, बाबा श्रीमत में और क्या कहेगा, कर लो। क्यों कहेगा, क्यों कहेगा। कई बार बाबा कहता है मान लो बच्चा कोई आया और मुझसे श्रीमत ले रहा है, मैं जानता हूँ ये कमजोर है तब आया श्रीमत लेने, तो मैं उसको कहूँ नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना और उसने जाके कर लिया, तो उसके ऊपर एक तो श्रीमत पहले की मिली हुई इसकी अवज्ञा की और बाद में बाबा से पूछा और उसके बाद फिर अवज्ञा कर ली, तो उसके बाद डबल पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा उसको कभी मना नहीं करेगा, कर लो बच्चे कोई बात नहीं। बाबा बहुत रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, इसलिए बाबा ऐसी राय देता ही नहीं है जिससे कोई भी डिस्टर्ब हो करके बाबा की आज्ञाओं का अवज्ञा कर ले। समझ सब देता है, जो कुछ कहना है बाबा मुरली में कह देता है। ध्यान से बाबा की कोई मुरली स्टडी करे तो मैं समझता हूँ साकार बाबा की मुरलियों में सब बातें बहुत सार रूप में स्पष्ट हैं। क्या करो क्या नहीं करो, खाना पड़ता है बाबा कब कहेगा नहीं खाओ, भले खाओ, भूखे थोड़ी रहना है। यहाँ जाना पड़ता है बाबा कहेगा भले जाओ, शादी में जाना पड़ता है यहाँ जाना पड़ता है बाबा मना नहीं करे क्योंकि पूछने आया है। बाबा ने सब नियम कायदे बना दिए हैं अपनी पवित्र जीवन के लिए। जो बातें रुकावट डालने वाली हैं हमारी मनसा शुद्धि के लिए, जो बातें रुकावट डालती हैं, उन नियमों को जितनी जो दृढ़ता से पालन कर सके, चाहे वो खान पान की शुद्धता है, चाहे संग की शुद्धता है, चाहे किसी भी प्रकार की बातें हैं जो हम सब समझते हैं समाज के अंदर रह करके मेहनत है, मुश्किल है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तो बाबा कहता है कि छोड़ने के पहले संकल्प देख लो कितना शक्तिशाली है। अगर शक्तिशाली संकल्प है तो कुछ भी हो जाएगा, बाबा कहीं न कहीं से आपको मदद दे देगा। अगर संकल्प जरा भी ढीला है तो ऐसा पेपर आएगा जो हिला देगा, उसमें फिर मदद भी नहीं मिले क्योंकि संकल्प खुद का ढीला है। शक्तिशाली संकल्प वाली आत्माओं को बाबा अपने आप मदद के लिए बंध जाता है, कहीं न कहीं से सहयोग दिला देता है। तो एक कुमार मिला, कहता है कि भाई साहब मेरी टिफिन की सेवा है। हमने टिफिन की सेवा क्या होती है, कहता है मैं भोजन बनाता हूँ और जो भी नौकरी पर जाते हैं जो नहीं बना सकते उनको टिफिन पहुंचाता हूँ। ये कुमार था बॉम्बे में। तो मैंने कहा ये तेरी सेवा तो बहुत अच्छी है, तुम बाबा का पक्का बच्चा है तो तुम ऐसी सेवा अपने ब्राह्मण परिवार में भी करो, क्योंकि कई ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो कुमार हैं या कोई कारण से बीमार पड़ जाते, उनको साथ की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, समय पर उनको नहीं मिलती है मदद, तो साथी याद आता कोई होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई सेवा वो पैसा लेकर के ही करता है तो मैं समझता हूँ बहुतों को उससे हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो पवित्र कुमार है और वो यही सेवा कर रहा है। तो हमने कहा कोई ऐसा लहसुन प्याज ऐसा भोजन तो नहीं बना के खिलाते हो, बोला कभी नहीं टच करता हूँ। तो अगर वो शुद्धता के साथ बाबा की याद से योग युक्त होकर के बनाता है और एक दूसरे को टिफिन पहुंचाता है तो ऐसे बाबा के बच्चे उनसे सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसे समय पर ही अधिक लोग फेल होते हैं। क्या करें, अभी ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा समय आ गया, अभी तो कोई साथ चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारी मनसा को डिस्टर्ब करने वाली हैं, खान पान है, संग है, पढ़ाई लिखाई है, आजकल की सबसे बड़ी माया जो टीवी के अंदर सीरियल्स देखते हैं, बुद्धि चलती रहती, कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं कोई गिनती नहीं है। जो एक संकल्पों की श्रेष्ठ एनर्जी है, जो बाबा कहता है बच्चे बहुत शक्तिशाली संकल्प होने चाहिए, अगर बहुत विस्तार में हमारे संकल्प चल रहे हैं, फास्ट गति से चल रहे हैं, तो उसकी शक्ति तो नष्ट हो रही है, सेवा कैसे करेंगे। और शक्ति संकल्पों को विस्तार में ले जाने के अनेक साधन है, यदि उन साधनों के पीछे कोई लग गया है, उन पर ज्यादा ध्यान गया है उसका, तो मैं समझता हूँ ये स्थिर संकल्प एकाग्र संकल्प नहीं हो सकते। इसलिए तीन बातों का ध्यान हरेक को अपनी मनसा की शुद्धता के लिए बनाना है। एक तो पहले बाबा कहता है एक नामी, एक बल एक भरोसा। अगर पूरा बाबा में भरोसा है तो उसका बल हमारे साथ काम करता है। एक बाबा के सिवाय दूसरे कोई की याद ना रहे, हर संबंध से हर प्राप्ति में बाबा ही याद आए, तो देहधारियों से बुद्धि डिटैच हो जाएगी और संकल्प में शक्ति जमा होती रहेगी, क्योंकि हर बात में बाबा ही याद आएगा तो बाबा तो बिंदु है, विस्तार है ही नहीं उसके पास। और आत्माओं को याद करेंगे तो कई प्रकार का स्वार्थ होता है उनका। मदद भले दे देते हैं लेकिन उसके पीछे वो अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, थोड़ी मदद करेंगे और उसके रिटर्न बहुत बड़ा चाहेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हम सब एक बल एक भरोसे में, एक बाबा दूसरा न कोई का पाठ पक्का करें। बाबा हर बच्चे को हर प्रकार से मदद करने के लिए बना रहता है, लेकिन देखता जरूर है कितना पक्का, एक में कितना विश्वास है इसका। अगर किसी देहधारी में जरा भी संकल्प गया कि वो मदद करेगा, वो होता तो मदद मिल जाती, तो बाबा फिर क्या करता है, साक्षी हो जाता है, पहले उसी मदद ले लो बाद में देखेंगे। तो बाबा भी देखता है कि कितना बच्चे को अटूट अपने में और बाप में विश्वास है, निश्चय है। दूसरा आता है कि इकोनॉमी, कितनी इकोनॉमी से हम अपने संकल्पों को, अपने बोल को, अपनी शक्तियों को, ये बचत की स्कीम है। हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये स्कीम बनानी चाहिए रोज कि मेरे कम से कम संकल्प चलें और अच्छे से अच्छा काम हो। संकल्पों को बहुत चला दिया, संकल्प चलते रहे, टेंशन पैदा हो गया, फिर जो करेंगे उसमें नुकसान ही नुकसान है। और आज बाबा ने बड़ा अच्छा वरदान दिया, करने के पहले सोचो, त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होकर के सोच लो तो सफलता मिल जाएगी, कर लिया और फिर सोचने लगे तो सफल नहीं हो सकते हो। तो सोचने के पहले भी सोच लेना, तीनों कालों को सोच लेना, करने के पहले भी सोच लेना कि इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा। त्रिकालदर्शी बाबा ने इसीलिए कहा है कि हम सब जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसके पहले सोच लें कि ये राइट होगा, इसकी रिजल्ट क्या होगी, आगे चल के इसका परिणाम क्या मिलेगा। तो इकोनॉमी हो जाए संकल्पों की भी, बोल की भी, जितना कम से कम बोल निकलते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। मैं कल कहीं कह रहा था किसी क्लास में, हमने कहा, टीचर्स का क्लास था, मैंने कहा आप अपने बोल को सवेरे से रात तक गिनती कर सकते हो मैंने कितना बोला, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनर्जी है जिसको अगर हम सफल करें, उतना ही बोलें जितना बहुत जरूरी है, तो अंतर्मुखता अपने आप आ जाएगी, संकल्प अपने आप स्थिर और शक्तिशाली हो जाएंगे। क्योंकि बोलने से बहुत नुकसान होते हैं, कोई योग बड़ा अच्छा करे और कराए लेकिन बोलता बहुत हो क्या होगा, जब उसके पास अपनी एनर्जी नहीं है। भले बोलने की नेचर होती है कईयों की, बोलने की, बहुत बोल बोल करके, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई आत्माएं बोल से डिस्टर्ब होती हैं, बोल से कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, संगठन टूट रहे हैं, एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही हैं, लोग समीप आना नहीं चाहते कि बहुत बोलेगा, इसके पास जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देगा। तो इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपनी मनसा सेवा करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कम से कम बोल हो और जो जरूरी है वही हो, और जो बाबा ने बोला वही बोल निकले, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इधर का सुना, इधर पढ़ लिया, इधर का कर लिया, वो सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं रही। बाबा ने इतना पढ़ाया, इतना सुनाया, इतना हम सब सुन रहे हैं, हमारे मुख से वही बोल निकले जो बाबा ने सुनाया है, जितना सुनाया है उसी पर चिंतन चले, उसी पर मनन चले, तो मैं समझता हूं ये हमारी मनसा शक्तिशाली बन जाएगी। एकाग्रता, तीसरा है एकाग्रता, क्योंकि विस्तार बहुत हो रहा है और होना ही है, संस्कारों के टकराव भी बढ़ रहे हैं, कोई न कोई कारण बन रहे हैं जो संकल्प अति फास्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना मन के संकल्पों को एकाग्र करने का, एकाग्रता के साथ स्थिरता है, एकाग्रता तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसके बाद जब स्थिर होने लगता है, बिल्कुल साइलेंस में स्थिर होने लगता है, तो उसमें स्वच्छता आ जाती है। और जब स्वच्छता होती है तो देखेंगे उसके अंदर स्पष्टता होती है, उसमें दिखाई देता है क्या है कैसा है। कई बार हम अपने आप को भी देख नहीं पाते, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं अंदर हूं, अंदर क्या हूं बाहर क्या हूं, दोनों स्वरूपों को भी देखने के लिए, नहीं तो अंदर वाले स्वरूप को हम दबाते रहते हैं, बाहरी स्वरूप हम बहुत अच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन अंदर और बाहर दिखाई दे कि ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी कमियां हैं, ये मेरे संस्कार हैं, इसे मुझे परिवर्तन करना है, तो उसके लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत है, बहुत स्थिर मन की जरूरत है, बहुत स्वच्छता की जरूरत है। जरा भी अस्वच्छता इधर उधर के संकल्पों की अगर हलचल होगी तो स्पष्टता नहीं आएगी, मैं जो हूं मैं जैसा हूं। जब से मैं बाबा का बना हूं अभी तक मेरी क्वालिटी में कितना परिवर्तन आया है, कितने संस्कारों में चेंज आई है, जो अशुद्धताएं थी, जो चिड़चिड़ेपन थे, जो वासनाएं थी, जो तृष्णाएं थी, जो एक ईर्ष्या द्वेष का घृणा का संस्कार था, जो एक दूसरे के प्रति बदला लेने की भावनाएं थी, जितना हम बाबा को याद करते रहते हैं, शक्तिशाली याद में रहते हैं, ये सब संस्कार धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अगर अभी तक वो संस्कार बार बार उछलते हैं तो माना हमने अंदर जाकर के अपने आप को देखा नहीं है, और उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत संकल्प में दृढ़ता नहीं धारण की है। दृढ़ता ही तपस्या है। जब हम बहुत दृढ़ता के साथ कोई संकल्प लेते हैं कि मुझे बदलना ही है, मुझे इस संस्कार को चेंज ही करना है, तब उस पर नजर जाती है। नहीं तो चल रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, अभी तक कौन बना है। कई बार साधारण संकल्प में अलबेलापन प्रवेश कर लेता है। एक अलबेलापन है, दूसरा आलस्य है, तीसरा ईर्ष्या है। आपस में एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या है, इसके पास ये है मेरे पास भी हो, इसको इतने चांस है मेरे पास भी। एक दूसरे के कारण ईर्ष्या के कारण कब किसको गिरा दे नीचे, कोई भी छोटी सी बात उसकी देख ली कमी कमजोरी की तो 10 लोगों को सुनाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि समझते हैं कि इसका तो बहुत मान है, ये तो बहुत पूछा जाता है, इसको तो हमेशा आगे रखा जाता है, इसके अंदर ये है, बड़ों को कहां पता है, इसको कहां पता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता घुटता रहता है, घुटता भी रहता है, वो आगे बढ़ते हुए देख भी नहीं पाता है, सहन भी नहीं होता उसे। और जब चांस मिलता है, जब मौका मिलता है, तब उसकी कोई ना कोई बात लेकर के वातावरण में वो बात फैलाता है। इसलिए मुझे अपने आप को देखना है, मैं किसी से ईर्ष्या तो नहीं करता हूं। मेरे से कोई कर रहा है तो हम कभी कभी कह देते हैं, अच्छा तुमको जो चाहिए ले लो भाई, क्या चाहिए, मेरे पास है क्या, जो बाबा ने दिया है वही हम कर रहे हैं, वही हम संभाल रहे हैं, मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को इतना योग्य बना लें, अपने आप बाबा चांस सब देगा, मांगने की भी क्या जरूरत है। हमारे जीवन में तो ये अनुभव रहा है सदा ही, मांगने से नहीं मिला कुछ भी, और मांगा है ही नहीं। हम अगर योग्य बनेंगे, अपने आप सीट मिलेगी, स्टेज मिलेगी, बाबा देगा। हम अपने चिंतन को अच्छे से अच्छा बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ज्ञान चिंतन करें, इधर उधर के चिंतन से अपने आप को मुक्त करते हैं। जो हो रहा है ठीक है, मुझे क्या करना है। अगर अपने आप पर ध्यान है किसी का, अपने पर नजर है, तो मैं समझता हूं अपने स्वचिंतन से, अपनी स्वस्थिति में स्थित होने से अच्छी स्थिति बनाने से अपने आप अच्छे अच्छे चांस मिलते हैं, और कोई भी चांस नहीं है तो कम से कम जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के वायुमंडल को हम चार्ज करें अच्छे वाइब्रेशन से, बहुत पॉजिटिव संकल्पों से, क्योंकि नकारात्मक सोचने वाले इतने अधिक बढ़ गए हैं, छोटी छोटी बात में नकारात्मक चिंतन है, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, ये ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये जीतेगा, वो हारेगा, ऐसा होगा वैसा, क्या बाबा कहता जी तुमको जाता उसमें। बहुत छोटी छोटी बातों में हमारा बहुत समय एनर्जी जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है, जो होगा बाबा जानता है, क्या करना मुझे, कैसे इस दुनिया का परिवर्तन करना है, उसके पास सब प्लान्स हैं। लेकिन भगवान के प्लान्स के ऊपर भी अपने प्लान्स हम ऐड कर लेते हैं कई बार। बाबा के पास प्लान नहीं है क्या, कैसे इस दुनिया को बदलना है मुझे, कैसे संसार को बदलना है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सब प्लान लेकर के बैठा है अपने पास, और जिससे जहां पर जिस तरह से चेंज करा सकता है करा रहा है। फिर भी कई लोग अपने आप को थोड़ा सा अधिक बुद्धिमान समझ करके ये होगा तो हो जाएगा, ऐसा होगा तो हो जाएगा, चर्चा करेंगे, समय गवाएंगे, उसके पीछे अपनी एनर्जी लगाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें क्यों जा रहे हो, जो होगा सब अच्छा होगा, ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, इसलिए इस ड्रामा के कल्याणकारी रूप को देख करके आप अपने आप को बहुत स्थिर एकाग्र रखो, हलचल में नहीं आओ। करण करावन हार बाबा है, यज्ञ उसका है, परिवार उसका है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य उसका है। कई बार बाबा के पार्ट के बारे में कितने सारे प्रश्न, कितने सारे फोन आते, अब क्या होगा, बाबा नहीं आया, आगे आएगा कि नहीं आएगा, अब क्या होगा। दादियां बिल्कुल निश्चिंत हैं, कोई चिंता कोई संकल्प नहीं कर रही हैं, लेकिन लोग कितने प्रश्न कर रहे हैं, और आज बाबा ने उसका उत्तर 77 में दिया हुआ है, अंडरलाइन किया होगा, जब तक संगम युक्त है तब तक ब्रह्मा का पार्ट है, दिया ना उत्तर था आज की मुरली में ही था ना, ब्रह्मा का पार्ट स्थापना से लेकर के आदि से अंत तक चलना ही है, और जब तक उसका पार्ट चल रहा है माना संगम युग है, और संगम युग पर हम सब पार्टधारी बाबा के पार्ट के परिवर्तन को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, शुरू से देखा है पार्ट में परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आया, साकार से अव्यक्त हुआ, और अव्यक्त में भी इतना बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन तो नियम है, होना ही चाहिए, लेकिन बाबा कहीं छोड़ के चला जाएगा बीच में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी भी प्रकार के प्रश्नों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, फुल स्टॉप। क्यों, क्या, कैसे, इस कल्याणकारी ड्रामा में प्रश्न होते ही नहीं है। बाबा ने हम सबको प्रसन्न चित्त स्थिति में रखा है और कहता बच्चे सब प्रश्नों से पार रहो, बाबा साथ है, साथ रहेगा, साथ चलेगा, साथ ले जाएगा, स्थापना का कार्य संपन्न होना ही है। हम सब निश्चय बुद्धि हैं, जानते हैं, फिर हलचल के प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है सब में बाबा हम सबको साथ दे रहा है, और हम सबको देख भी रहा है, बच्चों ने अपनी स्थिति कितनी अचल, कितनी अडोल, कितनी एक रस बनाई है। जो हो रहा है सब चीज को देखते हुए हलचल से परे रह करके हमें स्थिर एकाग्र होकर अपनी मनसा को इतना शक्तिशाली बनाएं जो बाबा की शक्तियां इस पर आती रहें और चारों तरफ फैलती रहें। मनसा सेवा क्या है, मैंने कहा तुम मनसा सेवा, हम मनसा सेवा क्या करेंगे, मन को सिर्फ स्वच्छ बना लो, कांच जैसा बना लो, बाबा की किरणें यहाँ आएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सेवा हो जाएगी, जिधर चाहिए उधर। तो हम तो मन अपने को सिर्फ स्वच्छता से संपन्न बनाए, व्यर्थ से मुक्त बनाए, एकाग्र स्थिति में स्थित होकर के रहें, बाबा अपने आप सकाश देगा, वो किरणें बाबा की आएंगी, यहाँ पड़ेंगी और चारों तरफ फैलेंगी, यही मनसा सेवा है। तो स्थिरता एकाग्रता स्वच्छता को बढ़ा करके एक बल एक भरोसे के आधार से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं तो पूरे विश्व का कल्याण आज नहीं तो कल होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी।